Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. एक संबंध को स्थापित किया जाता है विवाह के संस्कार में, और रिश्ता ऐसा स्थापित किया जाता है, पुराने जमाने में जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, एक जन्म का रिश्ता नहीं है। इसका अर्थ ये होता था जो धर्म का कार्य है पुरुष करता था उसका फल पत्नी को भी मिलता था, इसका मतलब दूसरे जन्म में भी उसके फल का प्रभाव रहता था। तो एक रिश्ते एक जन्म का रिश्ता नहीं है। ऐसे जैसे जब रुक्मणी जी ने लिख के भेजी थी चिट्ठी भगवान श्री कृष्ण को, तो कहा था अगर इस जन्म में आपको मैं प्राप्त कर सकती तो मैं और जन्म लेके भी आपको ही प्राप्त करने का प्रयास करूंगी, लेकिन मैं और किसी को वरण नहीं करूंगी। तो ये एक एक जन्म का रिश्ता भी नहीं है, तो इसको बड़े सावधानी से समझना चाहिए। आजकल विवाह एक फिर भी आप जब कोई विवाह का कुछ मंडप बनाया है, ऐसे कुछ संस्कार है, वेद मंत्र पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्नि के सामने देवताओं का आवाहन करके और समाज के बीच में ये एक संबंध को स्थापित करते हैं, तो ये मर्यादाएं थी। और ये और भारत संस्कृति का जो विवाह है वैदिक संस्कृति का, वो कुल परंपराओं को चलाने के लिए है, कुल परंपरा को चलाने के लिए। भगवद गीता में अर्जुन ये कहता है कुल परंपराएं नाश हो जाती हैं अगर पुरुष नहीं रहेंगे और स्त्रियां कोई संभालने वाला नहीं रहे तो कुल परंपराएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, कुल की परंपराओं की सुरक्षा के लिए विवाह संस्कार हुआ करता था। भोग प्रदान भारतीय वैदिक विवाह भोग प्रदान नहीं है। भोग प्रदान का मतलब इट्स नॉट फॉर एंजॉयमेंट, इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूरे परंपरा का दायित्व अपने ऊपर उठाना है। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक आदमी को दो आदमी को पालन करना, अब तो आजकल बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है समाज के अंदर, कैसे भी कारण कुछ भी उसका हो सकता है, नहीं तो दो आदमी का पालन करना है एक पुरुष को, तो पत्नी है तो उसका पालन पोषण करना है, तो डबल जिम्मेवारी हो गई ना। तो इसका मतलब उसने एकदम जो है ज्यादा भार उठा लिया है, तो ज्यादा जो भार उठा लिया है उसके लिए उसको उसको बहुत लैसियर होना आवश्यक तो होना था। इसलिए पुराने जमाने में गुरुकुल में लड़कों को शिक्षा ऐसी दी जाती थी कि देवर ट्रेन इन सच्चे वे ऐसे उनको शिक्षा देती थी कि विवाह के समय उनका जवाबदारी क्या है। ये शिक्षा बच्चों को स्कूल में अभी कोई देता है तो हमारे स्कूल में विवाह संस्कार की कोई शिक्षा कहां है? मर्यादाएं कहां है? माता पिता का सम्मान कैसे करते हैं? बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे करते हैं? हाँ, ये शरीर का तप में आता है भगवद गीता में। हाँ, कि शरीर का तपस्या क्या है? देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम शरीरम तप उच्यते, भगवान की पूजा करना, ब्राह्मण को सम्मान देना, गुरुजन को सम्मान देना, बड़े माता पिता आदि बुजुर्गों को प्रणाम करना, सम्मान देना, पवित्रता आदि, ये शरीर का तप है। इसका मतलब जिसको शरीर मिला है ये तपस्या है। तपस्या का मतलब नहीं चाहते हुए भी करना चाहिए। तो ये विवाह के बाद जवाबदारी बढ़ जाती है सुभाष जी परिवार के अंदर। लोग ये देखेंगे परिवार वाले कि अब आप बैलेंस कैसे जीवन को कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी से स्त्री और पुरुष को ये शिक्षा मिलती थी पहले, और अब ये है नहीं, इसलिए सब कुछ आस्ते आस्ते बिखरने लगा है। अच्छा है कम से कम ये इस काम के भक्त प्रभुपाद की कृपा से विवाह से पहले एक दिन सत्संग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, शुद्ध वातावरण, भगवान के नाम लेने से वातावरण पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, वातावरण सब 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 सराउंडिंग पवित्र होती है। तो पवित्रता के वातावरण में विवाह करना ये प्रभुपाद ने कृपा की है, नहीं तो विवाह के समय तो लोग तो आज नाते नाचते हैं गाते हैं, ऐसे कपड़े भी बहुत कम पहनने का प्रयास करते हैं, और अरे भाई कम कपड़े से आदमी अच्छा लगा तो गधा कुत्ता बिल्ली अच्छा लगना चाहिए, कभी कपड़े पहनते नहीं। ये बीच के ऊपर न जाना चाहिए। कभी जाने जाके देखते हैं तो वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमारे को तो बिल्ली कुत्ते गधे की तरह लगते हैं। कपड़े गए कहाँ हैं इनके, पशु की तरह कोई कुछ नहीं पहन के घूमता है। और ये शादी के वातावरण के अंदर में डिस्को गाना और नाचना, और ये उद्देश्य नहीं हुआ करता। तो बहुत बड़ा धार्मिक, बहुत बड़ा उत्सव यज्ञ है। यज्ञ का मतलब है यज्ञ भगवान विष्णु है। इसका मतलब भगवान विष्णु को आवाहन करके, देवताओं को आवाहन करके उनकी कृपा प्राप्त करनी है, क्योंकि पूरा जीवन ये दायित्व हमको निभाना है। नहीं तो शादी में बारात में आए खाने पीने वाले थोड़ी देर के बाद मरते जाएंगे घर, सारी उम्र पत्नी के साथ, तो उसको जीना है, तो उसको आशीर्वाद की जरूरत है। सब लोग जो आते हैं वो वातावरण आजकल तो ऐसा हो गया कि खड़े खड़े खाओ और अपने घर जाओ। तो ये कैसे भी स्कान के भक्तों ने प्रभुपाद की कृपा से विवाह से पहले सत्संग का ये आयोजन किया, ये बहुत आवश्यक है। और अधिक तो इससे पहले तो गुरुवर साथ आए थे राम जी के विवाह में, तो राम और लक्ष्मण जी के साथ तो विश्वामित्र थे ही, लेकिन वशिष्ठ जी और दोनों आदि दूसरे ऋषि भी वहां से आए थे। और जनक जी का अपना जो पुरोहित था कुल शर्दवान था मेरे ख्याल में, गौतम ऋषि का बेटा, ये सब बैठ के एक दूसरे को परिवार की पहचान कराते थे कि लड़की का परिवार किसका है, इसका दादा कौन है, इसका नाना कौन है, इसका कुल कौन है, इसकी परंपरा कौन है, इसका गोत्र कौन है। और फिर लड़के के पूरे, अभी आपके यहाँ तो हमने देखा नहीं, हमारे पास अभी भी शादी होती है ना, तो जब लड़की को विदा करने का समय होता है तब समाज खड़ा होता है। एक तरफ लड़की का समाज खड़ा होता है, एक तरफ लड़के का समाज खड़ा होता है, लड़का बीच में खड़ा होता है, लड़की स्त्री में खड़ी होती है। तब पंडित जी बोलना शुरू करेगा, और शुरू ऐसे करेगा कि भाई भगवान श्री रामचंद्र का विवाह सीता के साथ हुआ, श्री कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी के साथ ऐसे करते हुए, तो गौरी शंकर का विवाह हुआ, फिर ऐसे आज ये विवाह हो रहा है, इस विवाह में लड़की का नाना ये, लड़की का दादा ये, लड़की का पिता ये, लड़की का माता ये, फिर लड़के का माता पिता, इनका गोत्र कौन से ऋषि से है, ये सब पूरा बताते, पूरे समाज को बताते थे। अभी भी बताते हैं हमारे यहाँ, अभी हम देखते हैं कभी हमारे जो परंपरा है उसमें पूरे परिवार को समाज बताए थे कौन है। ये सबको मालूम होता था कि कौन किसका बेटा, कैसे क्या विवाह हो रहा है। और फिर अंत में कहते थे अब ये लड़की को साल हम अपने हाथों से, ब्राह्मण कहता था ये पिता ये माता अपने हाथों से इस लड़की को, इस कन्या को, इस वर को अर्पण करते हैं। ये कहते हैं फिर वो लड़की बेचारी अपने परिवार वालों से विदा होती थी, तब विदाई होती थी तब उसको वहां से रवाना करते। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक कार्यक्रम अभी भी होता है। तो कहने का सारा तात्पर्य है कि इस विवाह को एक सोशल फंक्शन नहीं समझना चाहिए, ये एक धार्मिक शुद्ध संस्कार है। वेदों का ये वैदिक संस्कार है, तो इसको एक कस्टम और एक ऐसे सोशल और एक एंजॉयमेंट का ये इसको नहीं समझना चाहिए, बहुत सीरियस है ये। और इस विवाह से पहले जैसे ये सत्संग एक दिन हो रहा है, होना ये चाहिए कि 5-7-8 दिन बैठ के दोनों घरों में, लड़की के घर में भी और लड़के के घर में भी, ऐसा सत्संग और शिक्षा देनी चाहिए कि वो आजीवन अपने साथ कैसे भक्ति जीमय शांतिमय जीवन बिता सकते हैं, ये शिक्षा देने की जरूरत है। ये इस काम के ऊपर सबको रोज भोजन भी कराएं, सत्संग भी करें, तो ये बहुत लाभ है, बजाय इसके कि एकदम जो भी आए खाए और चला जाए, उसका कोई अर्थ नहीं। वो शादी बिजनेस नहीं है, आजकल तो वो बिजनेस का माहौल बना दिया है, जाना है फिर गिफ्ट देना है फिर लेना है, फिर ये एक प्रकार का ये सोशल कस्टम के साथ एक सटल बिजनेस हो गया है शादियां आजकल। हमें तो देखा वो बड़े मुकाबले का वो ठेला खड़े होते हैं आधे से जो आते हैं रिसेप्शन में, तो लिफाफा कठा करने के लिए खड़े होते हैं, ले या होते हैं कि नहीं। तो ये कोई शादी का अर्थ नहीं। ये क्या होता था असल में, असल में होता क्या था कि क्योंकि अब ये लड़के का विवाह हो रहा है ना, तो ये घर बनाएगा, पूरा परिवार उसको संभालना पड़ेगा, तो जो रिश्तेदार हुआ करते थे वो उसको एक प्रकार का विदाउट इंटरेस्ट लोन देते, इसको बोलते थे विदाउट इंटरेस्ट लोन, वो उसके लिए 2-1 लाख रुपए मान्य हो जाते थे तो उसका सारा खर्चा निकलता था, फिर वो सब लिखा जाता था, और जब जिसने दिया उसके घर में शादी होती थी रिश्तेदार के, तो मानो उसने 500 दिया है तो जब उसके घर में शादी होती थी तो उसको 700 करके दिया जाता था, फिर 200 वो लिखता था एक्स्ट्रा इसके आए, फिर उसके घर में शादी होती तो वो वापस आता था, तो ये एक एक परिवारों को एक दूसरे के हेल्प करने के लिए हुआ करता था पहले, ये एक सिस्टम था एक कि भाई इसको नया जीवन शुरू करना है तो इसको भाई 2-4-5 लाख रुपया चाहिए कोई भी काम करो शुरू करने के लिए, तो हम सब लोग मिलकर इसकी सहयोग करते हैं, नॉन इंटरेस्ट वाला लोन होता था, 10-15 साल के बाद जब उसका लड़के की शादी होती थी तब वापस रिटर्न हुआ करता था। हमें मालूम है हमारी शादी में मानो तो पिताजी माता जी कहीं भाई सेवा नहीं कर पाते हैं, इतना ज्यादा कोई 50 लाख रुपए घर पे नहीं है और 50,000 खर्च होना है, तो पहले जमाने 50,000 भी ऐसे रेडी में नहीं पड़े थे, लेकिन शादी में 50,000 रुपये परिवार को मिलते थे तो उसे सारा खर्च हो गया। अब कोई अब देना कितना है, साल में किसी की एक शादी होगी तो 50,000 रुपया देना है, 100 रुपया देना है, तो आस्ते आस्ते करके बाद में उतरा, लेकिन काम तब तो ये एक बुद्धिमानी का एक एक सिस्टम बना रखा था हमारे पूर्वजों ने, तो अभी वो सब खत्म होता जा रहा। तो कैसे भी इस विवाह संस्कार को जो भक्त लोग हैं उनको चाहिए इसको अच्छी तरह से 2-3 दिन कीर्तन करके सत्संग करके कहीं से, जैसे ये भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा है प्रभुपाद ने, इसको विवाह यज्ञ लिखा है, ऐसे बहुत सी जगहों पे शिक्षाएं हैं गृहस्थों के लिए, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 14वां या 15वां आ गया 7वें स्कंद का गृहस्थ की शिक्षा है, नारद मुनि दे रहा है युधिष्ठिर महाराज को, वो पूरा अध्याय कम से कम पढ़ना चाहिए और बिठा के जिसका विवाह हो रहा है उसको कि गृहस्थी का धर्म क्या है, और उसमें पहली शिक्षा है कि गृहस्थी को शांतिपूर्वक रहने के लिए वासुदेव अवतार कथा को सुनना चाहिए, पहली शिक्षा ये है। एक छोटा सा किताब मेरे ख्याल में परम पूज्य राजा गोविंद महाराज ने कहीं प्रवचन दिया था और गृहस्थ आश्रम करके एक छोटा किताब छपा हुआ है हिंदी में इसी अध्याय पूरे के ऊपर, आप लोगों ने देखा है कभी, आया नहीं आया, मेरे पास था मैं देखा था उसको, लेकिन भागवत के 7th कैंटो के 14th चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक या 15 या 14 गृहस्थ आश्रम की शिक्षा, और नारद महाराज युधिष्ठिर को दे रहे हैं, तो गृहस्थी के क्या धर्म है, पहला धर्म है भगवान की कथा सुनना, दूसरा धर्म है समय समय के ऊपर तीर्थ यात्राओं पर जाना, पहले विवाह के बाद लड़का लड़की, अभी आपके यहाँ ऐसे होता है हमारे पास पहले शादी के बाद जो वैदिक सिस्टम है कि लड़का लड़की मंदिर में जाते थे और दोनों जाके वहां पूजा करके आशीर्वाद देते थे, हम तो हमारे परिवार का एक मंदिर था, विवाह के दिन हम अंदर बैठे, हमें मालूम है कि आएंगे लड़का लड़की, और फिर वो नारियल वहां भगवान को चढ़ाते थे और कुछ दान भगवान को दक्षिणा रखते भगवान के सामने, फिर पंडित जी चरणामृत देता था, आशीर्वाद देता था भगवान का, कुछ फूल माला, ये तो जितने गांव में मंदिर 3-4 तो सब मंदिरों में जाते थे आशीर्वाद लेने, ये यहाँ परंपरा भी नहीं है, कुछ खत्म हो गया ना, कि शादी के बाद ऐसे नहीं पल्लू बंधा हुआ, आगे लड़का चलता था पीछे लड़की बंधी हुई थी, और आगे पुरुष चलते थे और पीछे स्त्री लड़की के साथ होती थी और गीत गाती हुई जाती थी, लेकिन हर मंदिर के अंदर लड़का लड़की जाते थे, बाकी सब बाहर रुक जाते थे, वो जाके आशीर्वाद लेके प्रणाम करके भगवान को, और वहां से जो लड़के का असिस्टेंट होता था उसके पास कितने मंदिरों में जाना है, तो आपने कृष्ण बलना मंदिर में पत्नी को बांध के साथ में लाना, उधर चढ़ना में हम जाएंगे सुबह, आप आना उस दिन पता ले आना, उधर आशीर्वाद लेना, और फिर बुना के से उधर भी चले जाना राजा गोलोकनाम के पास भी। ये शादी के बाद तो इसके क्या दिमाग में बात आता था कि भाई भगवान, ये भगवान को हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कि बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और फिर तीर्थ यात्राओं पे जाते थे, अभी हनीमून पे जाते हैं, ये कहां से ये मून तो होता नहीं है, हनी भी नहीं होती है ना, तीर्थ यात्रा पे जाते थे, तीर्थ यात्रा पे जाते थे, गंगा के किनारे बैठकर भगवान को प्रार्थना करते थे कि अब ये पूरा दायित्व हमको आजीवन निभाना है, आपकी कृपा होनी चाहिए। तो ये प्राण लिखा है ग्रस्त आश्रम की मर्यादाओं की बातें। तो कैसे भी आप लोग इसको रिवाइव कीजिए तो अच्छा है, कुछ शिक्षाएं ये जरूर, ये मंदिर तक जाना चाहिए, पांच सात गाड़ियां लेकर लड़की वाले उत्साह के साथ मंदिर में जाओ या प्रणाम करके आए, आशीर्वाद लेके आए। तो एक आस्ते आस्ते ये सारी जो हमारे आध्यात्मिक संस्कार थे उसको वापस लाने की जरूरत है, नहीं तो ये आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? कोई किसी का क्वेश्चन? कोई नो क्वेश्चन? हाँ प्रभु मोर भी शपाऊ पर से बोला है। सीधा प्रभुपा जी ने कहा है कि आपकी पत्नी आपकी सेवा के लिए नहीं है, आप दोनों भगवान की सेवा के लिए हो। वेरी स्टेट पावर एंसर यू है कि आपकी पत्नी आपके भोग और सेवा के लिए नहीं है, लेकिन आपके सहयोग के लिए है कि आप भगवान की सेवा दोनों मिलकर कैसे करोगे, या कि आपके भोग के लिए आपकी सेवा के लिए नहीं है, आपका सहयोग करेगी भगवान की सेवा के लिए। आपको भगवान की सेवा करने में वह सहयोग करेगी, जिसका मतलब दोनों को मिलकर भगवान की सेवा करनी। तो कंसेप्ट क्या है, हम समझते पत्नी हमारे भोग के और हमारी सेवा के लिए, हमारे दिमाग में ये होता है। तो इसका मतलब हम इंजॉयर हो गए, हम इंजॉयर हो गए तो इसका मतलब भगवान को हमने नकार दिया। तो भोगता हम तो एक भगवान है, हम तो भोगता है नहीं। तो पहले सिद्धांत ये समझना चाहिए कि हमारी सेवा और भोग के लिए नहीं, हमारे सहयोग के लिए है कि हम भगवान की सेवा उनके सहयोग से करेंगे कि भाई वो ठीक है, अच्छा प्रसाद बनाएगी भगवान को भोग लगाने के लिए, अच्छा पुत्र उत्पन्न करेगी भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो एक कंसेप्ट ये है कि ये भगवान की सेवा के लिए है जो हमको भगवान ने दिया है, मेरे लिए नहीं है, मेरे भोग के लिए नहीं है। ये जब मेरे भोग के लिए शब्द आता है दिमाग में तो इसका मतलब हम भगवान के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, कि भगवान के भोग भगवान करता है, हम तो ही भोग भोगतारम यज्ञ वो है, तपस्या सबका भोगता तो भगवान है, इंजॉयर तो वो है, हम तो उसकी सेवा के लिए है, उनकी इंजॉयमेंट के लिए है। तो उनको कैसे सुख दें हम दोनों मिलकर, अथवा उनकी सेवा मिलकर कैसे करें, ये हमारा उद्देश्य है। स्पेशली अगर आवश्यकता है तो भगवान की सारी पूजा प्रतिष्ठा घर में मंदिर में ग्रहणीय है, घर में ग्रहणी वो लक्ष्मी के स्थान के ऊपर होती है, घर सारे को संचालन करने के लिए। तो भगवान की सेवा के लिए वो हमारे को प्राप्त हुई है, इसलिए हम दोनों मिलकर कैसे भगवान की सेवा कर सकें। फिर उसको बच्चों को शिक्षा देना उसका दायित्व है, संस्कार बच्चों में डालना उसका दायित्व है विशेष रूप से। तो उद्देश्य ये है कि दोनों पत्नी पत्नी भगवान की सेवा के लिए है, न कि पत्नी पति की सेवा के लिए है या कोई जस्ट नॉट फॉर एंजॉयमेंट, ये उसका उद्देश्य नहीं। یہ پہلی غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بس وہ ہمارے لیے. اور کوئی پرشن؟ اس لیے اس کو بولتے ہیں کلو سمبر شودر. اس لیے کلجگ میں سب لوگ شودر کے استر کے اوپر ہیں. شودر کا مطلب ہوتا ہے نتھنگ, کوئی سنسکار نہیں ہے اس کا. سوسائٹی میں فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, تھرڈ کلاس, فورتھ کلاس, ففتھ کلاس, پانچ کلاس کے لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں. فرسٹ کلاس براہمن ہوتا ہے, سیکنڈ کلاس ففتھ, تھرڈ کلاس ویش, فورتھ کلاس شودر, ففتھ کلاس آؤٹ آف دیز فور کاسٹ. تو جنرلی لوگ سب ففتھ کلاس ہیں دنیا میں اس وقت, بیکاز کوئی سنسکار نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کلو سمبھو شودر سنسکارات بھوتی دویج. جب اس میں سنسکار کریں گے تب اس کا ورن کوئی بنے گا. اس لیے اصل میں پوری دنیا کے اندر کیول لوگ سنسکار ہے, نو سیولائزیشن. تو کوئی سنسکار ہے ہی نہیں سماج کے اندر. جنم سے سنسکار نہیں آ رہے ہیں. گربھ انسان سنسکار نہیں ہے, اس لیے جنم سے ہی کمپیوٹر ہے. اب شکشا دی جائے گی تب اس کا ورن بدل سکتا ہے. تو ہمارا دائتو یہ کہ کرشن بھاونا کا ادیشیا پہلے تک کا تھا کہ میرا اتاؤ کا مطلب مائی سوسائٹی, جس اس کرشن کانشیسنس جو ہماری سوسائٹی ہے, اس کا بہت بڑا ریسپانسبلٹی ہے ٹو ٹرین فرسٹ کلاس پیپل. براہمن کے سنسکار دینا ہمارا ادیش پہلے تھا. پھر وی ہیو دی گریٹسٹ ریسپانسبلٹی ٹو ٹرین دا فرسٹ کلاس پیپل. براہمن کا سنسکار ہم دے کے شکشا دے رہے ہیں سب کو. یہ ہمارا سب سے بڑا دائتو. یہ ایک فرسٹ کلاس لوگ اگر مانو موریشس میں دس بھی ایسے لوگ ہوں تو پورا موریشس سدھر سکتا ہے. دس بھی بہت ہے اگر ایسے سنسکار کے فرسٹ کلاس کے لوگ ہوں. ایک طور پر پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا پریورتن کر سکا ایک پرسن. تو ایسے سنسکار نہیں ہے, یہ بہت بڑی سمسیا ہے. وی آر ہمارا پرچار کا ادیش ہے کہ لوگوں کو سنسکار دیں, کلچر دیں. وی آر کلچر موومنٹ, وی آر ناٹ اے ریلیجیس موومنٹ. وی آر ناٹ ریلیجیس موومنٹ, وی آر کلچرل موومنٹ. ہم سنسکار کی سنستھا ہے. پرپاد میں ہم دیکھو بھگوت نہیں تو ایک ریلیجیس کا دوسرا ڈگری تو کتاب نہیں پڑھتا ہے. بھائی مسلمان گیتا نہیں پڑھے گا اتنا ہندو قرآن نہیں پڑھتا ہے تو یہ ریلیجیس پیپل ہو گئے. لیکن گیتا کو فلاسفر پڑھتے ہیں, پروفیسر پڑھتے ہیں, کیونکہ کلچر. تو ہم کلچرل موومنٹ ہیں. پرپاد میں پورے وشو کو سناتن کلچر دیا ہے. کپڑا کیسے پہننا چاہیے, بھوجن کیسے بنانا چاہیے, جیون کیسے نرواہ کرنا چاہیے. فلاسفی نہیں دیے, کلچر دیا. اٹ از بیکاز آف کلچر ابھی تک یہ سنستھا چل رہی ہے. کیول فلاسفی ہوتی تو آتے آتے ڈرائی ہو جاتی. کلچر ہے پورا سنسکار. کلچر کا مطلب پہننا, کپڑے پہننے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ دھوتی کرتے میں شہر میں جاؤ, آپ کہیں جھوٹ نہیں بولو گے, آپ بےمانی نہیں کرو گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے لوگ کہیں گے یار یہ تو بھکت ہے, ایسے کیسے بولتا ہے. آپ کسی کو گالی بھی نہیں دیں گے, اس کپڑے پہنے ہوں گے کسی کو گالی دیتے ہوئے آپ کو شرم آئے گی, لوگ کہیں گے یہ تو بھکت ہے گالی دے رہا ہے. اب سمجھ گئے نا, یہ کپڑے آپ کو بہت سرکشت رہتے ہیں. اب یہ کپڑے اتار کے دوسرے پہن کے جاؤ شہر میں کچھ بھی کرو. یہ کلچر کے کپڑے لیکن شادی ہو کے ایسے بولتا ہے, ایک دم بولیں گے نہیں بولیں گے. ایک سادھو ہوا کرتا تھا, اس کو کسی کارن سے کورٹ میں جانا پڑا. تو سادھو کے کپڑے اتار کے سادھارن کپڑے بولا مہاراج یہ کیا کر رہے ہو؟ بولا ان کپڑوں کا اپمان ہے, کورٹ میں پہن کے جاؤں گا تو یہ کپڑے میرے ہیں. دس از ڈریس, دس گریس فار دس ڈریس, اٹ از ناٹ مینٹ فار دیٹ پرپز. ٹھیک ہے میرے کو جانا ہے لیکن میں ان کپڑوں کا سمان کرنا چاہتا. تو یہ پولیس والا پولیس کی ڈریس میں ہوتا ہے تو اس کو بہت بڑا پاور ہوتا ہے. وہی پولیس والا سادے کپڑوں میں گھومے گا کوئی اس کو پوچھے گا بھی نہیں. ڈاکٹر وائٹ کوٹ پہنا ہوگا نا تو اس کو آدمی بولے گا, ہاتھ میں دے گا پیٹ میں چاقو مارے تو پڑے گا نہیں. لیکن ایسے کسی آدمی کے ہاتھ میں چاقو ہے تو ہم کہیں گے تم پیٹ بھر. تو اس ڈریس کا فرق پڑتا ہے نا. تو یہ ڈریس ہمارا جو ہے یہ کلچر ہے. تو ہمارے کو گورو کے ساتھ یہ ڈریس پہن کے گھوم جانے میں وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. ये हमारी सुरक्षा है, ये हमारे को सेफ रखती है। इसलिए हमको घबराना नहीं चाहिए। गिव अस मोर मोर गौरव, गौरव इज नॉट प्राइड एक्चुअली बट इट इज मोर प्रेस्टीजियस है। ये वैकुंठ की ड्रेस है, इसमें वैकुंठ कॉन्शियसनेस दिमाग में रहती। माना आपके गले में धोती पहनी तिलक लगा हुआ है तो यू विल बी नाइसली, किसी के आदमी से आपका बिहेवियर अच्छा हो जाए। आप मिसबिहेव नहीं कर सकते, ये कल्चर है। भोजन बनाने का कल्चर, खाने का कल्चर प्रभुपाद ने सिखाया, ईट ओनली विथ राइट हैंड, डोंट टच योर लेफ्ट हैंड टू द फूड। अपना उल्टा हाथ भोजन को नहीं लगाओ थाली में, नहीं तो स्कूल में बच्चों का हाथ को ऐसे बांधते थे टीचर कि भोजन को हाथ ना लगे लेफ्ट। ये तो ऐसे काट के, ये तो ये मुस्लिम जो 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 लोग अनकल्चर है ऐसे, वो उस तरफ के हमारे को मालूम नहीं है, जहां किसी को शिक्षा किसी ने नहीं दी है, लेकिन ऐसे रोटी को काट के नहीं खाते हैं। जिसे पुराने संस्कार में भोजन खाने से पता लग जाता था कौन से वर्ण का आदमी है, कौन से वर्ण का आदमी है, इसका पता लगता था भोजन खाने से सिर्फ। अभी भी साधु समाज के अंदर जहां भोजन खाते हैं ना, वहां उसको धो के पोछा देके उसके बाद उसके ऊपर पांव रखने, नहीं तो वहां से पांव रख के और कहीं गए तो पूरा घर जूठा हो गए। प्रभुपाद ने कहा पानी पी के भी हाथ धोना चाहिए। प्रभुपाद ने शुरू शुरू में जब उधर गए 65-6 में तो चिट्ठी लिखी कि दिस पीपल हैव नो कल्चर, दे इवन डोंट यूज वाटर इन द टॉयलेट, तो टिश्यू पेपर से काम चलाते हैं कि इनको कहां से सुधारेंगे। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और हमारी संस्कृति यह है कि चढ़े जाने के बाद स्नान करना है, तो ये क्या कल्चर पर ऊपर गिवन अस, वी आर अ कल्चरल मूवमेंट। हमारे को कल्चर ठीक तरह से, इसकी स्पिरिचुअल कल्चर है ये, और ये साइंटिफिक है। प्रभुपाद कहते थे किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं है वैदिक संस्कृति में तुम कौन हो। आदमी स्त्री को बीच में सिंदूर डाला हुआ है इसका मतलब विवाहित है, शीज मैरिड, पता लगता है ना सिंदूर लगा हुआ है विवाह, तो पूछना नहीं है कि तुम्हारी जाति हुई है कि नहीं। और विधवा का अपने वस्त्र होते थे, उसके वस्त्र से पता लगता था इसका पति है, पति घर में है कि नहीं है उसके कपड़ों से पता लगता था। किसी आदमी को बोलने से पता लगता था कि ये क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि वैश्य कौन है, बोल भाषा से पता लगता था। एक राजा था, अपना मिनिस्टर था उसका और उसके सर्वेंट थे, कहीं जंगल में गए थे, भटक गए, सेपरेटेड एक दूसरे से अलग हो गए। तो एक जगह से राजा गुजर रहा था तो एक अंधा बैठा था, आंखें नहीं थी, तो इसने पूछा उससे, अंधा शाह, शाह का मतलब है बहुत बड़ा आदमी, किसी को शाह जैसे हमारे को ब्राह्मण कहते हैं ना, ऐसे जो सूफी है वो शाह कहते हैं मुस्लिम में। तो अंधा शाह, यहां से आगे रास्ता मालूम है? तो उसने बोला जी बादशाह आप यहां से जाइए। जी बादशाह, बादशाह कहते क्यों को, वो आगे चला गया। पीछे आया उसका मंत्री, उसने कहा फकीर, अंधा फकीर रास्ता कहां से, बोला महाराज के वजीर, वजीर कहते मंत्र मंत्री को, यहां से जाइए। पीछे आया सर्वंट, उसने बोला ए अंधा, तो उसने बोला ये बोलत यहां से जाओ। जब तीनों आपस में मिले तो उसने बोला ये अंधा है, इसने हमको पहचान कैसे लिया, मेरे को कह दिया मैं बादशाह हूं, इसको कह लिया मंत्री हूं, इसको कह दिया तुम नौकर हो, उसको जाके पूछा कि आपको आंखें तो नहीं है, आपने पहचाना कैसे, बोला आपने जो बोला उससे मैं समझ गया आप कौन हो सकते, आंखें नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे बोलने से मुझे पता लग गया कि तुम राजा हो, ये मंत्री हो और ये नौकर है, उसकी भाषा से पता लगता है। तो अंधे को भी पता लगता था वैदिक संस्कृति में कि सामने वाला आदमी कौन है। अब दो आंखें खुली हुई उसके ऊपर चश्मे लगे हुए तब भी नहीं पहचानते हैं कि कौन है, कौन आ रहा है, हु आर यू, व्हाट इज योर, हु आर यू, पहले तो पूछते हुआ आज यू, तो पूछने की जरूरत नहीं होती थी पहले। ये समाज के अंदर अपने आप शिक्षाएं दी जाती थी, तो ये संस्कार हमको, जैसे हमारे पूछने की जरूरत नहीं, सफेद कपड़े वाला है दोस्ती है, ब्रह्मचार्य पीछे लांग है तो ब्रह्मचार्य है, और वैसे है तो सन्यासी है। तो ये हमारे को पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा कौन सा आश्रम। तो ये बिल्कुल हमारा कल्चर, ये कल्चरल मूवमेंट है। तो हमको इस कल्चर को कैसे भी प्रिजर्व करना है, ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो इस कल्चर का सत्यानाश कर रहा, इस कल्चर का सत्यानाश कर रहा, इसे डिस्ट्रॉय कर रहा है इस कल्चर को। टेलीविजन, बिलबोर्ड, मीडिया, ये सब हमारे कल्चर की को बहुत बिगाड़ रहे हैं। इसको ठीक तरह सुरक्षित करना, ये संभालना है, इसको प्रिजर्व करना, ये हमारा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके लिए हृदय में जब तक दया नहीं होगी तब तक ये नहीं हो सकता है। वी हैव टू बी मोर मर्सीफुल टू प्रिजर्व द कल्चर। हमको सुरक्षा इस कल्चर की, ये हमको शिक्षा संभालना है। तो आपका क्या मनोनयन प्रश्न है, आप कुछ पूछ रहे हैं?
आप बता सकते हैं भगवान की दोनों सेवा करेंगे तो दोनों मतलब एक ही पट्टी में दोनों रहेंगे तब रहेगा, मतलब एक पट्टी
मतलब एक पट्टी रहेगा। किसी ने पहले कभी पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, किसी ने बोले दो पहिए तो ठीक है लेकिन ट्रैक्टर के पहिए तो नहीं है, एक छोटा और एक बहुत बड़ा बराबर के पहिए। इधर आपके ट्रैक्टर का नहीं, हमारे ट्रैक्टर में आगे पहिया इतना छोटा होता है, पीछे इतना बड़ा होता है, ऐसा पहिया दोनों बराबर के पहिए ठीक तरह चलने चाहिए। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी साइंस है अपने आप में, ये कोई साधारण चीज नहीं है। इतनी यही सबसे बड़ी समस्या है कि सबको शादी करनी है, सबको घर चलाना है, सबको 50, 100 साल, 60 साल, 70 साल साथ जाना है, लेकिन कहीं ये शिक्षा नहीं दी जाती है घर कैसे चलाना, कभी कोई एजुकेशन नहीं है इसकी, है कोई एजुकेशन इसकी? एमबीए बिजनेस के लिए है, डॉक्टरी के लिए है, अरे वो तो 5-6 घंटे काम करते हैं, ये 18 घंटे सर काटाना पड़ता है, इसके लिए कहीं कोई शिक्षा नहीं। बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं, इसलिए घर टूट रहे हैं। पहले ये शिक्षा घरों के अंदर दादा दादी माँ नाना नानी दिया करते थे, ये शिक्षा हमारे घरों के अंदर शिक्षा मिलती थी, लड़के लड़कियों को संस्कार मिलते थे। अब घरों में संस्कार है ही नहीं, घर असंस्कारित होते जा रहे हैं आस्ते आस्ते। कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट का बहुत बड़ा दायित्व है, एज ए मोर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व द वैदिक कल्चर। वी आर कल्चरल मूवमेंट, वी हैव टू प्रिजर्व द कल्चर। उठना बैठना चलना खाना, ये हर चीज जो है ये कल्चर है, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना है सिर्फ भगवद गीता में हम आत्मा नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, बिल्कुल नॉट इनफ। ये ठीक, इतने से काम नहीं चलेगा, इज ए फुल फ्लेज कल्चर। हरे कृष्ण, सुखदेव जी बोलिए। ये भी टीचिंग बगैर, एक महीना अब मैं आपको सच बताता हूं, हमारा एक फ्रेंड बहुत बड़ा ऑफिसर है, आप समझिए कमिश्नर, हम एक बार उसके घर गए, हमने बोला आपकी बेटी कहां गई, बिटिया बोला ट्यूशन ले रही। मैंने कहा आपकी पढ़ाई तो खत्म हुई, अभी कहे की ट्यूशन ले रही है? बोला उसकी शादी होने वाली है ना, तो पोचा लगाना, झाड़ू लगाना, किचन को साफ करना, इसकी ट्यूशन ले रही है, वो इसकी क्या जरूरत है? बोला जहां जाएगी उसको सुपरवाइज कैसे करेगी, ये काम कैसे करते हैं? तो वो लड़की को ट्यूशन दी जा रही थी कि घर क्लीन करने वाली आएगी, उसको देखोगी कैसे कि कहां क्लीन किया है कहां नहीं किया है, उसकी ट्यूशन ले रहे। कि इसका मतलब जरूरत है कि इस बच्चे को एक महीना बैठ के शादी से पहले क्या जवाबदारी है पूरा शास्त्र बैठ के सिखाना चाहिए था कि जो कैसे विवाह में क्या होता। अभी तो विवाह में कुछ भी नहीं होता है, पहले लड़का आने से पहले जो लड़की की सहेलियां होती ना वो कोई एक पजल देती थी, पजल अगर नहीं वो सॉल्व कर सकते अंदर भी नहीं आने देते थे, बाहर खड़े होते थे, घर में आ ही नहीं सकते थे, चाहता है पहले बैठ नहीं था। हाँ, वो देख देते इंटेलिजेंट कितना है पता लगता था, वो बहुत बड़ी बुद्धिमानी से ایک دوسرے کو پہچان ہوا کرتے تھے, پرشن اتر ایسے بڑے ادبھت ہوا کرتے تھے. سب سماپت ہو رہا ہے, ہاؤ ٹو پرزرو دس, ہماری جواب داری بڑے بزرگوں کو یہ شکشائیں دینی چاہیے. پروپت کے ڈسپلنس ڈے پہ ہم نے بولا تھا دو چیزیں دنیا میں کوئی نہیں سکھاتا, جو پریم کرنا کوئی نہیں سکھاتا. دس نو یونیورسٹی ویز یو کین بی ٹاٹ ہاؤ ٹو لو. پریم کرنا کوئی نہیں سکھاتا ہے, اور پریم کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا ہے. پریم ہمارا دھرم ہے, پریم ہی سناتن دھرم ہے, اور سیوا ہی سناتن دھرم ہے, یہ کوئی نہیں سکھاتا. چوتھا دنیا ساری نے پریم کرنا سکھایا بھگوان کو, ہی ٹاٹ از ہاؤ ٹو لو گاڈ. ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پریم سکھانے کے لیے, سیوا سکھانے کے لیے, یہ گرست آشرم کیسے چلانا یہ سکھانا, یہ ہمارا اس لیے بچوں کی شکشا بہت ضروری ہے. بچوں کو بچپن سے گرو کل کی شکشا میں, تو سنڈے اسکول شروع کرو, سنڈے میں بچوں کو بڑی اچھی شکشا ابھی سے دینی چاہیے. ابھی کچے ہیں تو میرے جا سکتے ہیں, تو بچے جو ڈرائی بامبو ہے اس کو موڑو گے تو موڑے گا نہیں, ٹوٹ جائے گا. جو گرین بامبو ہے دیٹ کین بی مولڈیڈ. سو بچوں کو تھوڑا سا ابھی سکھایا جا سکتا ہے. بڑے بمبو ٹوٹ جائیں گے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو چینج. بمبو اس لیے کہتے ہیں اندر سے خالی ہے, ایمٹی فرام ان سائڈ, اینڈ دے آر ناٹڈ ایٹ مینی پلیسز, دے آر ٹوسٹڈ اینڈ ناٹڈ, اینڈ دے آر ایمٹی فرام ان سائڈ, اینڈ دے ول بریک. اس لیے بچوں کے اوپر بہت ذرا سنسکار اور شکشا دینے کی ضرورت ہے. کم سے کم سنڈے اسکول چلانے چاہیے, اور آگے چل کے 25-50 گرس تک اکٹھے ہو کے اسکول کھولنا چاہیے اپنے بچوں کی شکشا کے لیے. ہماری بڑی ضرورت یہ ہے, ہمارا اپنا ایک اسکول بھی نہیں جہاں سادھارن ایجوکیشن کے ساتھ سنسکار کی ایجوکیشن دی جائے. بچوں میں سنسکار ہونے چاہیے. ہرے کرشن, تھینک یو ویری مچ. میرا پریمانند, تو آپ سب لوگ شبھاش کو اس کے وواہ کے اپلکش میں بھگوان کو پرارتھنا کر کے آشیرواد دیجیے. بھگوان کو پرارتھنا کیجیے کہ اس کا گرست جیون بھکتی مئے اور شانتی مئے اور سکھمئے ہو, اور بھگوان کی بھکتی کرتا رہے. تو یہ آپ سب لوگ اپنے ہردے سے بھگوان کو, ایک ہمارے ساتھ بھگوان کا نام لو, اور پھر اپنے من سے یہ بھگوان کو پرارتھنا کرو. ہرے کرشن.